नमस्कार भारत, तारीख 1 जुलाई, दिन बुधवार। मैं हूं विनीत खरे। आईएमएफ का कर्ज नहीं चुका पाने वाला ग्रीस, दुनिया का पहला विकसित देश।
They have misled the Greek people and now they're trying to play the future of Greece in cards.
अमेरिका और क्यूबा के बीच दूतावास खोलने पर समझौता। लंदन पुलिस ने कहा कि MQM नेता के कथित इकबालिया बयान से जुड़ा दस्तावेज उसका नहीं। आज से देश भर में डिजिटल इंडिया वीक, लेकिन क्या होंगी चुनौतियाँ?
ये वही है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम कहते हैं हमारे पास राइट तो है तो, लेकिन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं लगाएंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे तब तक।
साथ में अखबारों की सुर्खियां और विंबलडन से मैचों का ताजा हाल, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार अविनाश दत्त से। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुकाने के बाद ग्रीस दुनिया के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला विकसित देश बन गया है। 30 जुलाई बीतने के साथ ही ग्रीस का आर्थिक सहायता का समझौता भी खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि पहले से ही आर्थिक तंगी से बदहाल ग्रीस के लिए पैसे जुटाना अब और मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वर्तमान हालात के बावजूद ग्रीस और यूरोजोन के बीच में बातचीत जारी है। चीन ने ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक वादा किया है। इससे पहले चीन इसे देश का आंतरिक मामला बताता रहा है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां से मुलाकात के बाद चीन के प्रधानमंत्री ली काचियांग ने कहा कि चीन साल 2020 तक जरूरत की 20% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज या नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि चीन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि साल 2030 के बाद या उससे पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी न हो। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरा फाबियन ने कहा, चीन जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश है, उसने पेरिस में एक राष्ट्रीय योगदान के नाम से एक बड़ी घोषणा की है। ये बड़ी बात है क्योंकि चीन ने वचन दिया है कि 2030 के बाद या शायद उससे पहले ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाएगी। ये थे लॉरा फाबिया के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम के बदले में कोई आश्वासन नहीं देता है तो ईरान के साथ बातचीत बंद कर दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के फैसले को एक हफ्ते तक और बढ़ा दिया है। इसके कारण वियना में जारी बातचीत जो देर रात समाप्त हो जाती और लंबी खिंच जाएगी। राजनयिकों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच में कई मसलों पर अभी भी मतभेद हैं। इंडोनेशिया में सेना का एक परिवहन विमान मैदान शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मर जाने की आशंका जताई जा रही है। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस विमान में कम से कम 113 लोग सवार थे। मलबे से अभी तक 84 शव निकाले जा चुके हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में बच्चों के यौन शोषण के आरोप के चलते 2 फ्रेंच सैनिकों को निलंबित कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सेना प्रमुख ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि क्यूबा ने माओ से बच्चों के भीतर HIV और सिफिलिस के संक्रमण को रोकने में बड़ी सफलता पाली है। WHO की प्रमुख मार्गरेट चान ने सफलता को सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। तयशुदा समय में IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुका पाने वाला ग्रीस दुनिया का पहला विकसित देश बन गया है। ग्रीस की ओर से IMF को 1.6 अरब यूरो दिए जाने थे, लेकिन ग्रीस ऐसा नहीं कर पाया। 30 जून की समय सीमा खत्म होने के ठीक पहले ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से एक समझौते की पेशकश की थी, जिसे यूरोजोन के मंत्रियों ने खारिज कर दिया। इस बीच ग्रीस में अनिश्चितता का माहौल है, जहां एक तरफ ये डर है कि ग्रीस अपना 323 अरब यूरो का कुल कर्ज नहीं चुका पाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये खतरा भी है कि उसे शायद यूरोजोन छोड़ना पड़े। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए अविनाश दत्त से।
Thank you. ये आवाज़ें हैं उन लोगों की जो ग्रीस की राजधानी एथेंस में आर्थिक मदद के बदले यूरोजोन के सरकारी खर्च में कटौती और करों को बढ़ाने के प्रस्तावों को मानने के पक्ष में जमा हुए थे। इससे पहले सोमवार को उन लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जो यूरोजोन के प्रस्तावों के खिलाफ थे। ग्रीस में हर जगह बहस का मुद्दा बस यही है। लोग एक तरफ तो यूरोजोन के दबाव के चलते वेतन और पेंशन में कटौतियों से परेशान हैं और कटौतियों से घबरा रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस अवस्था से निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बढ़ती बदहाली से परेशान तो हैं लेकिन डरे हुए हैं कि कहीं ग्रीस और यूरोप की जोर आजमाइश में ग्रीस यूरोजोन के बाहर ना हो जाए और जो रहे सहे पैसे बचे हैं वो भी खत्म ना हो जाएं, भविष्य में विकास की खिड़की बंद ना हो जाए।
They have misled the Greek people and now they're trying to play the future of Greece in cards.
ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और ग्रीस के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरे शख्स का कहना था कि उसे लगता है कि उसका उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य यूरोजोन में रहने में ही है और इसके लिए ग्रीस को यूरोजोन का कहा करना ही होगा। वहीं एक तीसरे आदमी ने कहा कि वो इस सरकार का विरोध या पिछली सरकार का समर्थन नहीं कर रहा, वो बस यूरोप के साथ रहना चाहता है। उसे वर्तमान ग्रीक सरकार से ये शिकायत है कि उसने देश के लोगों को दो फाड़ कर दिया है। वैसे ग्रीस IMF के कर्ज को न चुका पाने के बाद अब औपचारिक रूप से बकायेदारों की सूची में शामिल हो गया है। इसी के साथ इस बात का खतरा बढ़ गया है कि ग्रीस को यूरोजोन को छोड़ना पड़ेगा। पर यूरोजोन के मंत्रियों का कहना है कि वे अभी भी ग्रीस के दिए प्रस्तावों पर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। BBC के आर्थिक मामलों के संवाददाता एंड्रू वॉकर का कहना है कि 30 जून को कर्ज न चुकाने से ग्रीस के ऊपर फौरी रूप से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा लेकिन तनाव और बढ़ जाएगा। समझौतों के अनुसार यूरोजोन के पास अधिकार है कि इसके बाद वो ग्रीस से फौरन अपने 180 अरब यूरो ब्याज समेत लौटाने को कहे। वॉकर के अनुसार ग्रीस उसे भी चुकाने की हालत में नहीं होगा जिसके बाद ग्रीस को यूरोजोन से निकाला जा सकेगा। ग्रीस की उम्मीद है कि ऐसा नहीं किया जाएगा और बातचीत जारी रखी जाएगी। लेकिन ग्रीस को यूरोजोन से निकालने का विकल्प खुलना अपने आप में एंड्री वॉकर के अनुसार एक बहुत ही गंभीर बात है। आगामी 5 जुलाई को ग्रीस में जनमत संग्रह है और 20 जुलाई को ग्रीस को करीब 3.5 अरब यूरो के बॉन्ड का भुगतान करना है। अगर ग्रीस ऐसा नहीं करता है तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ग्रीस के बैंकों को पैसे की आपूर्ति बिल्कुल बंद कर देगा।
ये थे अविनाश दत्त। और ताज़ा खबरों के मुताबिक IMF का कहना है कि वो कर्ज चुकाने की समय सीमा के तौर पर कोई नई तारीख मुकर्रर करने के बारे में सोच सकता है। इस बीच BBC को पता चला है कि ग्रीस खर्चों में कटौती का कोई नया प्रस्ताव यूरोजोन के देशों को सौंप सकता है। आज दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि अमरीका और क्यूबा एक दूसरे की राजधानियों में दूतावास खोलने को लेकर समझौते पर पहुंच गए हैं। इस बारे में एक औपचारिक घोषणा आज बुधवार को की जाएगी। पिछले महीने ही अमरीका ने क्यूबा को आतंकवाद फैलाने वाले देशों की अपनी सूची से हटा लिया था। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
अमरीका और क्यूबा के बीच रिश्तों की बहाली का सिलसिला जारी है और इसी के तहत अहम कदम बढ़ाते हुए अब अमरीका और क्यूबा एक दूसरे के देशों में फिर से अपने दूतावास खोलने का भी ऐलान करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज यानी बुधवार को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी क्यूबा की राजधानी हवाना में अमरीकी दूतावास खोलने के बारे में ऐलान करेंगे और इसी तरह क्यूबा द्वारा भी अमरीका में दूतावास खोले जाने की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ही अमरीका द्वारा क्यूबा को अलग थलग रखने की दशकों से चली आ रही नीति को बदलने का ऐलान करते हुए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध की बहाली का ऐलान किया था। बराक ओबामा ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था,
These 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
बीते 50 वर्ष बताते हैं कि अलग थलग करने की नीति नाकाम साबित हुई है और अब समय आ गया है कि नीति बदली जाए। हम दोनों देशों के बीच यात्रा, व्यापार और सूचना को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को भी बढ़ावा दिया जाएगा और अमरीका अब आने वाले दिनों में हवाना में फिर से दूतावास भी खोलेगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति के शब्द। अमरीका और क्यूबा इस बारे में एक साल से अधिक समय से कूटनीतिक कोशिशें करते रहे थे और इस वर्ष अप्रैल महीने में अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के साथ मुलाकात भी की थी। दो दिन पहले अमरीका के सांसदों का एक दल भी क्यूबा की यात्रा से लौटा है। इस दल में शामिल सेनेटर पैट्रिक लीही ने दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द दूतावास खोलने की वकालत की। सेनेटर पैट्रिक लीही कहते हैं, क्यूबा में हम अपना बड़ा सा दूतावास खोलें, जहां हर आयु के लोगों के आने जाने का प्रबंध हो, जहां वो अमरीका के बारे में जानकारी बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्यूबा में जल्द ही अमरीकी दूतावास खुलेगा। हाल ही में अमरीका ने क्यूबा को आतंकवादियों को मदद देने वाले देशों की सूची से भी निकालने का ऐलान किया था। अमरीका ने क्यूबा पर लगाया गया व्यापारिक प्रतिबंध भी हटा लिया है, जिसके बाद अमरीका और क्यूबा के बीच नौका सेवाएं भी फिर से शुरू हो रही हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते बहाल करने में एक बड़ी रुकावट ये रही है कि अमरीकी राजनयिकों को क्यूबा में आज़ादी से कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध रहता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
विवादों में फंसी पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पार्टी के नेता तारिक मीर के कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आने वाले कथित इकबालिया बयान से जुड़े दस्तावेज पर लंदन की पुलिस ने कहा है कि ये उसका दस्तावेज नहीं है। इस दस्तावेज में तारिक मीर के हवाले से कहा गया था कि वो अपने कुछ साथियों के साथ कथित तौर पर भारत के संपर्क में थे और भारत से पैसा और दूसरी मदद ले रहे थे। मैंने ज्यादा जानकारी के लिए लंदन में बात की BBC उर्दू संवाददाता सकलेन इमाम से।
दो तीन दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि जो पाकिस्तान के मीडिया में जो नशर किया जा रहा था, यानी उनके टेलीविजन चैनल पे गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान के बहुत सारे अखबार में जो छपे थे, बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स छपी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि लंदन की पुलिस को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के एक लीडर तारिक मीर ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया है, कन्फेस किया है कि MQM की तरफ से वो या उनके कुछ लोग जो थे वो भारत से ये रबते में थे और भारत की तरफ से उनको पैसे मिला करते थे जिसमें मुख्तलिफ रकूम का यानी कई लाख पाउंड्स मिला करते थे। सबसे पहले मैंने कोशिश की कि जो यहाँ का होम डिपार्टमेंट है उसके होम सेक्रेटरी टेरेसा मे जो हैं उनसे मैंने बराह रास्त ईमेल भेजी तो उनके प्रेस ऑफिस की तरफ से मुझे जवाब आया कि ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये एक ऐसे केस के बारे में है जो लंदन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है तो आप बेहतर है ईमेल आप उनको भेजें। तो मैंने ये ईमेल उनको भेजी लंदन पुलिस को, जिसका अगले दिन फिर मुझे ये जवाब आया है। इसका मैं आपको अंग्रेजी में पहले तो जवाब पढ़ देता हूँ कि मेट पुलिस के जो तर्जुमान हैं एलन क्रॉकफर्ड जो हैं कि हैविंग एग्जामिन्ड द पेपर्स वी कैन कंफर्म दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पुलिस डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने दरअसल वाजे तौर पे कहा कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो लंदन पुलिस के बारे में कहे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनका लंदन पुलिस के पास किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है।
जी, और मेरा अगला सवाल होगा कि ये जो लंदन पुलिस का बयान है सकीन साहब, इससे और किस तरह के सवाल खड़े होते हैं?
विनीत, इससे बहुत सारी बातें खड़ी होती हैं। क्या कोई जाती या निजी सतह पे यानी प्राइवेट सतह पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है? इससे ये भी सवाल पैदा होता है, चलिए हो सकता है ये डॉक्यूमेंट जो है लंदन पुलिस की प्रॉपर्टी या उसके रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो, कोई और एजेंसी ऐसी है जो इस तरह के बयान दे रही है। मैं अभी भी एक सहाफी के हिस्से ये नहीं कहूंगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के जर्नलिज्म में फैले हुए हैं ये 100% गलत हैं। हो सकता है किसी सतह पर ये सही हो, लेकिन कम से कम एक बात की जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि इन दस्तावेजात का लंदन पुलिस से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है और लंदन पुलिस ने इसी बात की वजाहत की और बड़ी वाजे तरीके से कहा है कि ये दस्तावेजात जो है ये लंदन पुलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं।
लंदन से ये थे BBC उर्दू संवाददाता सकलेन इमाम। केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आज से देश भर में डिजिटल इंडिया वीक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत देश के 600 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें विभिन्न राज्यों के IT मंत्री, छात्र आदि शामिल होंगे। दिल्ली से समीर आत्मज मिश्र।
स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और विश्व योग दिवस के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आज से लोगों को साथ लेकर उन्हें डिजिटल बनाने के अभियान पर निकल रही है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इससे संबंधित कई कार्यक्रम हफ्ते भर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इस योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के बारे में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी।
डिजिटल इंडिया हैज बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड।
रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि डिजिटल इंडिया के मुख्य रूप से 3-4 हिस्से हैं। डिजिटल रूप से सभी को जोड़ना, शासन की गुणवत्ता को सुधारना, तकनीक को लोगों की समृद्धि से जोड़ना ताकि विकास में सबको सहयोगी बनाया जा सके। डिजिटल इंडिया वीक की लॉन्चिंग के दौरान कई बड़े देसी विदेशी उद्योगपति और सीईओ भी मौजूद रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई कि इस दौरान अरबों रुपए के निवेश समझौते भी होंगे।
हमने इस बात की कोशिश की कि उस दिन हम देश के उद्योगपतियों को भी बुलाएंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को बताएं। इंडियन इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स।
कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न शहरों में वाईफाई की सुविधा को भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के ऐप्स जैसे ई लॉकर, ई हॉस्पिटल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आदि भी प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। वहीं इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व संचार राज्य मंत्री शकील अहमद कहते हैं कि ये यूपीए की योजना को ही नए नाम के साथ शुरू करने जैसा है।
कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं की जा रही है। ये डिजिटल इंडिया कुछ नहीं है, ये ई गवर्नेंस जो यूपीए के वक्त में था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उसको नाम बदल के डिजिटल इंडिया करने की कोशिश की है। हम लोगों के वक्त में भी था कि इस मुल्क के जितने पंचायत हैं, जितने जिले हैं, जितने गांव हैं, सब में जो हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हो और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में दूरी कम हो, उसी को इन्होंने रीपैकेजिंग करके। लेकिन एक बात हम लोगों के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन की है कि आप मेरे पास वो फोटोज हैं जिसमें जब हमारे नेता लेट राजीव गांधी जी ने कंप्यूटराइजेशन की बात इस मुल्क में की थी तो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं आज तक के अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने बैलगाड़ी का जुलूस निकाल के कंप्यूटराइजेशन का खिलाफ किया था और पार्लियामेंट को घेरा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत देश के हर घर को डिजिटल बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा और तकनीक जैसी कई चुनौतियां ऐसी हैं जो सभी को डिजिटल बनाने के मकसद में रोड़ा बन सकती हैं।
दिल्ली से ये रिपोर्ट थी समीर आत्मज मिश्र की। बीबीसी संवाददाता पारुल अग्रवाल ने डिजिटल इंडिया वीक के बारे में बात की डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक ओसामा मंजर से और उनसे पूछा कि सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं उन्हें पूरा करने में क्या चुनौतियां हैं।
कायदे से तो डिजिटल भारत प्रोग्राम होना चाहिए था। बहरहाल इंडिया भी भारत है, भारत भी इंडिया है, लेकिन हम भारत ये कहें तो भारत जो है वो जरा रूरल को प्रेजेंट करता है, हमारी पिछड़ी हुई आबादी को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर उसका नाम ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसकी अच्छाई ये है कि ये एक प्रोग्राम की तरह इसको कंसाइज तरीके से एक जगह किया गया जिसकी वजह से इसका एक ब्रांड वैल्यू बढ़ गया है। तीसरी चीज ये कि ये जो 9 पिलर जिसको बोल रहे हैं 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है ये कह देना तो बहुत आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है और होना भी इसका बहुत मुश्किल माना जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाईवे जो है उसमें ऑब्वियसली जो बात है और जो मंशा है और जो डिजायर है गवर्नमेंट की वो ये है कि आखिरी सभी घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचे। घर तक ब्रॉडबैंड पहुंचने तो बहुत दूर की बात है, हमको ऑप्टिक फाइबर लेके जाने की जो NOFN का इनका जो प्रोग्राम है, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का जो प्रोग्राम है, वो ऑलरेडी 3-4 साल पीछे चल रहा है। उसी तरह आपने यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन की जब बात कीजिए तो सबके पास फोन का एक्सेस होगा तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आपके पास फोन खरीदने की ताकत भी है सबके पास की नहीं, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं 20 रुपए भी नहीं हमारे पास एक दिन में कमाने के लिए, तो हम क्यों नहीं जैसे PCO पहले होता था, STD और ISD होता था, उसी तरह हम इंटरनेट पब्लिक एक्सेस पॉइंट क्यों नहीं बनाते हैं। ये तो मुश्किल काम नहीं है। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, ये वही है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं, हमारे पास राइट टू है तो, लेकिन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं लगाएंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे तब तक। और इन्फॉर्मेशन क्या हमें सिर्फ पहुंचाना है या इन्फॉर्मेशन लेना भी है लोगों से, दोनों बातें हैं।
अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताइए कि कितना समय सरकार को इन सब सारी चीजों को प्रैक्टिकली अचीव करने में लगेगा।
जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उन सबको स्ट्रेंथन करके इसके ऊपर उसी के ऊपर रिलाई करके और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि तो भी 10 साल लगेंगे।
ये थे डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक ओसामा मंजर। नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने कल सरकारी ठेकों में आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया। ऐसा कर नीतीश कैबिनेट ने जीतन राम मांझी सरकार के एक और फैसले को रद्द करने के बाद थोड़े बदलावों के साथ लागू किया। जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में ऐसे फैसलों के बहाने गर्म होते सियासी माहौल पर पटना से सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
चुनावी साल में बिहार सरकार द्वारा लोक लुभावन फैसले लिए जाने का सिलसिला जारी है। कल पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी कुछ ऐसे ही फैसलों पर मुहर लगी। कल अंचल स्तर पर 15 लाख तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण दिए जाने का भी फैसला लिया गया। अब ऐसे ठेकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला संवेदकों को सरकारी नौकरियों की तर्ज पर आरक्षण मिलेगा। लेकिन नीतीश कैबिनेट के इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। पूर्ववर्ती जीतन राम मांझी सरकार ने कल के फैसले से ही मिलता जुलता एक फैसला 19 फरवरी को लिया था, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस फैसले को रद्द कर दिया गया और फिर कल कुछ बदलाव के साथ इस संबंध में फैसला लिया गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता में आते ही नीतीश सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से ये फैसले रद्द किए थे। बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक इससे इनकार करते हैं।
लेकिन हमने सारी समीक्षा करके से उसको खारिज किया था क्योंकि वो कानून सम्मत प्रस्ताव नहीं थे और आज जो प्रस्ताव है पूरे कानून सम्मत। हमने प्राधिकृत समिति से, वित्त समिति से, वित्त विभाग से सारे चीजों को पार करते हुए जो प्रक्रिया है संविधान में, जो किसी प्रस्ताव को आने में कैबिनेट के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उन प्रक्रियाओं से गुजर करके टिके और तब एक ऑथेंटिक कानून सम्मत संविधान सम्मत प्रस्ताव बना कर टिके आज उसे पास किया गया।
दरअसल 4 मार्च को नीतीश कैबिनेट ने मांझी सरकार के 34 फैसलों को रद्द कर दिया था और अब थोड़े बहुत बदलावों के साथ नीतीश सरकार कुछ वैसे ही फैसले ले रही है। इनमें सरकारी ठेकों में आरक्षण, सिपाही से दरोगा तक को 1 माह का अतिरिक्त वेतन और महादलितों को 5 डिसमिल जमीन देने जैसे फैसले शामिल हैं। नीतीश सरकार के इस कदम को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने मजबूरी में उठाया गया कदम करार दिया है। साथ ही पार्टी ने रद्द किए सभी 34 फैसलों को लागू करने की मांग भी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी कहते हैं,
जो 34 फैसले है जीतन राम मांझी ने किए अपने मुख्यमंत्री काल में, वो सभी जो मुद्दे थे वो गरीबों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो तो नीतीश कुमार को मजबूरी है, मानना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मामले गरीबों के साथ जुड़े हुए मामले हैं और गरीब सब बात जान गया।
नीतीश सरकार द्वारा सत्ता में आते ही पहले एक झटके से 34 फैसलों को रद्द करने और फिर इन्हें एक एक कर लागू करने के पीछे की राजनीति के बारे में वरिष्ठ पत्रकार एस ए साध कहते हैं,
नीतीश कुमार इन फैसलों को अपने रिजिम में अपने तरीके से लेना चाह रहे थे ताकि आगे के चुनाव में इसका सीधा लाभ उनको मिले। इसी के तहत आज इन्होंने ठेकेदारी में आरक्षण के जो फैसला था उसको फिर से बहाल कर दिया।
जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार को अब यह लगने लगा है कि उनका ज्यादा आधार पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश सरकार आने वाले दिनों में रद्द किए कुछ और फैसलों को लागू कर सकती है, क्योंकि मांझी सरकार द्वारा भी इन्हीं वर्गों को लुभाने के लिए ये फैसले लिए गए थे। मनीष शांडिल्य, पटना।
और अब अखबारों की समीक्षा के लिए चलते हैं अविनाश दत्त के पास। अविनाश,
ये आज अखबारों में अलग अलग खबरें हैं। मेरे पास सबसे ऊपर रखा है दैनिक जागरण, जिसमें सबसे पहली खबर है कि ललित ने सोनिया को लपेटा, कांग्रेस अध्यक्ष की बहन पर $6 करोड़ मांगने का आरोप लगाया है और ललित मोदी ने इसमें वरुण गांधी जो कि भाजपा के सांसद हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं। इसी के साथ एक और छोटी सी खबर है कि भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में अपने जो वैट है वो बढ़ाया, कर बढ़ाया है, तो उसकी प्रतियां फाड़ी हैं। ये खबर करीब करीब हर अखबार में है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं पहले पन्ने पे पसरी है, कहीं अंदर दुबकी है, लेकिन वो ये है कि केजरीवाल के घर का बिजली का बिल जो है 25 लाख रुपए आया है। इसके ऊपर ये खबर है, उनके घर में 30 एसी लगे हुए हैं और कितना क्या है इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। और नवभारत टाइम्स का मैं जिक्र करूं तो इसमें भी बिल पर महाभारत, ये सबसे पहली खबर है। बिजली के बेतहाशा खर्च को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। इन टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर है, कांग्रेस ऑफर्स गवर्नमेंट डील, एक्स स्वराज रादे गेट सी जीएसटी बिल नॉट। कांग्रेस ने सरकार से पेशकश की है, जाहिर सी बात है कि ये सब कहा सुनी की बातें हैं, हवाले से कही जा रही हैं किसी की, कि कांग्रेस सरकार से कहा है कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे दोनों को हटा दिया जाए और उसके बदले में कांग्रेस जीएसटी बिल जो है सरकार का उस बिल का समर्थन करेगी। और इसके बाद अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं तो ये एक खबर है, मूडी स्विंग सम डिसअपॉइंटमेंट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसकी खबर का जिक्र है। उसमें ये कहा गया है कि इस कंपनी ने जो कि रेटिंग करती है ये बताती है कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं और ये इसके आधार पर तय होता है कि दुनिया की कंपनियां आपके यहाँ कितना पैसा लगाएंगी और क्या करेंगी। उसने भारत सरकार की रेटिंग्स को कुछ गिरा दिया है, उनने कहा है कि रूरल स्लोडाउन यानी ग्रामीण इलाकों में जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो रहा है और ये भारत को शायद महंगा पड़ सकता है।
शुक्रिया अविनाश। और विंबलडन में कल खेले गए मैचों पर पेश है अपूर्व कृष्ण की ये रिपोर्ट।
Wimbledon 2015 update। विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ हूं मैं अपूर्व कृष्ण। कल खेल का दूसरा दिन था, बड़े मैचों की शुरुआत हुई सेंटर कोर्ट पर, जहां महिला सिंगल्स में पिछली बार की विजेता और दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा का मुकाबला था नेदरलैंड्स की खिलाड़ी किकी बर्टेंस से। पेत्रा ने केवल 35 मिनट में सीधे सेटों में 6-1, 6-0 से मैच अपनी झोली में डाल अपना तीसरा विंबलडन जीतने के अभियान की शुरुआत की। सेंटर कोर्ट पर दूसरा मैच था दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का। बोस्निया हर्जेगोविना के दामिर जुमहूर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 6-3 से हराने के बाद फेडरर ने कहा कि वो अच्छा खेले।
I was so excited to going back on. I was a bit rushed because Kvitova finished her match so quickly. So I was running, you know, warming up, then getting everything organized.
मैं बड़ा उत्साहित था मैच के लिए, बल्कि मुझे एक तरह से भागना पड़ा क्योंकि पेत्रा क्वितोवा का मैच बड़ी जल्दी खत्म हो गया। मैं तब वार्म अप कर रहा था कि अचानक मैंने देखा मैं सेंटर कोर्ट पर हूँ। मैं अच्छा खेल सका। आप असल में इसीलिए मेहनत करते हैं कि सेंटर कोर्ट पर आए तो सब ठीक रहे। रोजर फेडरर के शब्द। सेंटर कोर्ट पर तीसरा बड़ा मैच था लोकल हीरो और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडी मरी का। कल उनका पहला मैच था कजाकिस्तान के मिखाइल कुकुशकिन के साथ। 2 घंटे 11 मिनट तक चला मैच, उन्होंने 6-4, 7-6, 6-4 से जीता। फेडरर और मरी के अलावा कल 2 बार के विंबलडन चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने भी अपना पहला मैच आराम से 6-4, 6-2, 6-4 से सीधे सेटों में जीत लिया। नडाल का मुकाबला ब्राजील के थॉमस बेलुची से था। विंबलडन के दूसरे दिन एक बड़ा उलटफेर महिलाओं के वर्ग में हुआ, जब तीसरी सीट के खिलाड़ी रोमानिया की सीमोना हालेप अपने पहले ही मैच में 106वीं वरीयता की खिलाड़ी स्लोवाकिया की ज्ञाना चेपेलोवा से हार गईं। आज विंबलडन के तीसरे दिन पुरुष सिंगल्स में दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और चौथी सीड के स्विस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन चैंपियन स्टैन वावरिंका दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। विलियम्स बहने सरीना और वीनस विलियम्स के अलावा रूसी खिलाड़ी मरिया शरापोवा भी दूसरे दौर के मैच खेलेंगी। भारतीय खिलाड़ियों में लिएंडर पेस और पूरव राजा अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पुरुषों के डबल्स मैच खेलेंगे। वहीं महिला डबल्स में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी सानिया मिर्जा स्विट्जरलैंड की अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ अपने विंबलडन अभियान की शुरुआत करेंगी। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और कार्यक्रम के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुकाने के बाद ग्रीस दुनिया के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला विकसित देश बन गया है। 30 जुलाई बीतने के साथ ही ग्रीस का आर्थिक सहायता का समझौता भी खत्म हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम के बदले में कोई बड़ा आश्वासन नहीं देता है तो ईरान के साथ बातचीत बंद कर दी जाएगी। इंडोनेशिया में सेना का एक परिवहन विमान मैदान शहर के रहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से अब तक 84 शव निकाले जा चुके हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में 2 फ्रेंच सैनिकों को निलंबित कर दिया गया है। फ्रांस की सेना पहले से ही 14 सैनिकों को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में जांच के घेरे में ले चुकी है। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया अविनाश दत्त आपका और शुक्रिया देवशीष कुमार का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में।